नमस्कार दर्शकों, नैतिक मूल्यों के सफर में हम फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित हैं। दोस्तों, आज संसार में जो कलह कलेश हो रहे हैं उसका क्या कारण है? मनुष्य मनुष्य से कटता जा रहा है, अंतर होता जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण हो सकता है आपस में विश्वसनीयता की कमी। तो आज हम इसी नैतिक मूल्य पर चर्चा करेंगे, द वर्च्यू ऑफ फेथफुलनेस। विश्वसनीयता क्या है, इसे हम अपने अंदर कैसे लाए और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो चलिए इस विषय पर आज हम चर्चा करें, चिंतन करें। इसके लिए हमारे स्टूडियो में आज पधारे हैं एक बहुत ही महान शख्सियत, बीके अमीरचंद भाई। बीके अमीरचंद भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर।
थैंक यू।
दर्शकों, मैं संक्षिप्त में बीके अमीरचंद भाई जी का परिचय करवाना चाहूंगी। ये 19 वर्ष की आयु से ही ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और 50 सालों से भी अधिक समय से इसमें समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप चंडीगढ़ हरियाणा से हैं और नॉर्थ पंजाब जोन की सारी ब्रह्मा कुमारी सेवाओं को आप निर्देशित करते हैं, संचालित करते हैं और आप ऑल इंडिया सोशल विंग के भी वाइस चेयरमैन हैं। आपका हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। भाई जी, फेथफुलनेस, विश्वसनीयता, इसका शाब्दिक अर्थ हमें समझाइए कि ये है क्या विश्वसनीयता?
बहुत ही सिंपल है
जी।
विश्वसनीयता, जब हम विश्वास कहते हैं, विश्वास का मायना यही होता है कि जब हम आपस में व्यवहार में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो जो बात मैं कह रहा हूँ या जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जिसके संबंध में, जिसके संपर्क में, उसको अंदर में विश्वास है मैंने कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है
जी।
इसको हम कहते हैं, उसको मेरे पर विश्वास है। विश्वास का मायने यही है कि मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरी इंटेग्रिटी पर उसको कोई डाउट नहीं है
जी। कहते हैं ट्रस्ट, ट्रस्ट भी कहते हैं ट्रूथफुलनेस, तो क्या डिफरेंस है? क्या ट्रस्ट फेथफुलनेस का अंग है? क्या डिफरेंस है फेथ और ट्रस्ट में?
एक्चुअली ये तीन चीजें हैं
जी।
एक है फेथ
जी,
एक है ट्रस्ट
जी,
एक है कॉन्फिडेंस। अंग्रेजी में, हिंदी में तो विश्वास कह देते
जी,
हैं
जी।
अंग्रेजी में तीन शब्द हैं
जी।
अब आम तौर पर मैंने देखा है कि जब हम फेथ कहते हैं तो फेथ वहां होता है जहां कोई सैद्धांतिक बात होती है
जी।
मेरा फेथ है इस रिलीजन में, इसकी टीचिंग्स में, उसको हम फेथ कहते हैं। ट्रस्ट जो आमतौर पर होता है वो व्यक्ति में भी हो सकता है और किसी संगठन में भी हो सकता है
जी।
जब हम कॉन्फिडेंस कहते हैं तो कॉन्फिडेंस आमतौर पर होता है कैपेबिलिटी के साथ, योग्यता कि मैं
ये सबका अलग अलग हो सकता है,
मैं ये कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। जैसे व्यक्ति का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, जैसे मेरा कॉन्फिडेंस है, कई बार हम कहते हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या मैंने कि मेरे में वो दृढ़ता नहीं है, वो संकल्प नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो इसको हम कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है।
पर फेथफुलनेस ये क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, इसका महत्व क्या है?
एक्चुअली तो क्या है कि एक अच्छे व्यक्तित्व का ये तो आधार है
जी।
अगर मेरा समझो कि विश्वास ही नहीं है किसी में, और एक्चुअली विश्वास के भी मैं ऐसा मानता हूँ अंदर का विश्वास, कई दा व्यक्ति बाहर से कुछ और होता है जिसके आजकल ड्यूअल पर्सनैलिटी कहते हैं।
बिल्कुल।
तो ड्यूअल पर्सनैलिटी में ये होता है कि बाहर से हम कुछ और कह रहे होते हैं, अंदर से हम कुछ और होते हैं
जी।
जिसे हम कथनी और करनी एक अगर है मेरी और कई समय तक लगातार मैं जब संबंध व्यवहार में आया हूँ और मेरी पर्सनैलिटी में कोई ऐसी चीज किसी को नजर नहीं आई है
जी।
तब उसका मेरे पर विश्वास होता है
जी। जी, अभी संबंधों की आपने बात की, संबंधों में, रिलेशंस में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है फेथ?
अब अगर आप देखिए
जी,
एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो व्हाट इज दिस?
कुछ नहीं है,
वो तो जैसे जैसे कि वो रह रहे हैं इकट्ठे, जैसे धर्मशाला में या ट्रेन में भी लोग इकट्ठे ट्रेवल करते हैं या रह जाते हैं कुछ दिनों के लिए। ट्रस्ट जो है वो तो वास्तव में संबंधों का आधार है ना
जी।
संबंध में अगर ट्रस्ट नहीं है चाहे किसी भी रिलेशनशिप में, तो व्यक्ति उसके साथ व्यवहार करता हुआ भी अंदर कुछ और होगा और बाहर कुछ और होगा।
जी, पेरेंट्स जो है बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनको अंदर एक फेथ नहीं रहता है कि ये पता नहीं आगे जाके क्या करेंगे, मतलब हम अनफेथफुल हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?
नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि माँ बाप को जब से बच्चा छोटा है
जी
और उनके ही कनेक्शन में रहा है, उनकी हर एक्शन उनके पास उनके ध्यान पर है, उन्होंने किस वक्त बात कही थी, उन्होंने कितनी मानी कितनी नहीं मानी, सारी लाइफ ही उनकी उनके पास है, उस बेस पर ही उनका ट्रस्ट या फेथ जो है वो बनता है
जी।
अगर वो देखते हैं कि ये बच्चा समय पर उठता ही नहीं है, स्कूल का काम करता ही नहीं है, इसको करवाना पड़ता है, इसमें अपने आप वो चीज़ नहीं है
जी।
तो माँ बाप के फेथ में फर्क तो पड़ेगा ना।
जी जी, तो वैसे लक्षण
अगर उसके वो चीज़ उसके अंदर है
जी
कि वो अपने आप ही या इशारे से ही कोई बात समझ जाता है या करने लग जाता है, अच्छा एक बार कोई करेक्शन दी है, अगली बार वो उसका ध्यान रखता है
जी।
तो देर आर सो मैनी थिंग्स इन लाइफ जिससे व्यक्ति का जो है वो ट्रस्ट या फेथ पैदा होता है
जी। क्या एफर्ट्स करें ताकि हम फेथफुल बन सके दूसरों के लिए, हमें क्या एफर्ट्स की जरूरत है?
मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी ये कोई उस ढंग से नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ ऐसी चीज करें, ये तो एक पर्सनैलिटी का हमारा पार्ट है
जी।
अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं,
जी
मेरी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी चीजें हैं इन बॉर्न जिसे हम कहते हैं, संस्कार रूप में जिसे हम कहते हैं, वो अगर मेरे अंदर वो चीज़ है, मैंने पेरेंट्स को जिनके साथ मैं रहा हूँ, मेरे माँ बाप हैं, उनका लाइफ मेरे सामने है, अगर वो मेरे उन्होंने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया, ऐसे चले हैं, तो मेरे अंदर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कोई ऐसी चीज़ आएगी। इसलिए कुछ चीजें तो इनबॉर्न होती हैं जो लेके हम आते हैं,
इनहेरिटेंस।
दूसरी चीज ये होती है कि मेरा जो रिलेशनशिप है उसके साथ मेरा कितना, क्योंकि ये एक तरफ नहीं होता है विश्वास,
दोनों तरफ से
होता है, इट इज टू वे। तो आमतौर पर मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका किसी में विश्वास है ही नहीं। विश्वास तो हर एक का है
जी,
मगर किसी के साथ होता है किसी के साथ नहीं
जी,
होता।
ये कैसे निर्धारित करें कि ये विश्वसनीय है या नहीं?
नहीं, जब हम किसी के कनेक्शन में आएंगे, रिलेशन में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, तो हमें कुछ ही समय में आभास हो जाएगा उसका
जी।
अगर हमने कोई बात कही है
जी।
या जो हमने देखा है कि मैंने उनसे बात की और उन्होंने उस बात को कितनी वैल्यू दी और उन्होंने उसी ढंग से मेरे साथ बिहेव किया और निस्वार्थ भाव से किया, अनकंडीशनल किया, तो मैं समझूंगा ना कि इसको कोई मेरे से कोई उस ढंग का इंटरेस्ट नहीं है, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग ये मेरी हेल्प कर रहा है, तो उसे आप समझेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी कुछ और ढंग की है,
परख शक्ति यहाँ काम आएगी।
बिल्कुल, तो उसे आप लोग व्यवहार से आपको मालूम पड़ जाएगा इस व्यक्ति का कोई मेरे में उस ढंग से कोई किस्म का मेरे में स्वार्थ या रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं है
जी।
ये जो कुछ भी कर रहा है ये एज ए ह्यूमन बीइंग या उसकी एक नेचर है
जी।
उसका संस्कार है उस ढंग से ये मेरे साथ इस ढंग से व्यवहार कर रहा है तो उससे हमें पता लग जाता है
जी। कभी कभी हम ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, विश्वसनीय कैसे बनाया जा सकता है किसी को, इसके लिए हमारे अंदर और से कौन सी क्वालिटीज चाहिए? परख शक्ति जैसा भी आपने कहा
जी
जी, इसके अलावा और हमें किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है?
वो क्या है कि कई दफा हम लोग इमोशनल बिहेवियर जो होता है
जी,
वो मैंने देखा है कि कई दफा नुकसान पैदा करता है
जी।
अगर हमारे अंदर, अब मेरी पर्सनैलिटी में धीरज है, शांति है, मेरे अंदर स्टेबिलिटी है, क्योंकि जो परख शक्ति है उसका संबंध अंदर की स्टेबिलिटी से है
जी, बिल्कुल।
अगर मैं अंदर शांत हूँ, धीरज हूँ, तो मेरी जो वो परख शक्ति है वो एक्यूरेट काम करती है
जी।
तो मुझे एकदम अपने आप टच होगा
जी।
कि ये व्यक्ति कैसा है
जी।
और अगर मैं इमोशनल हो जाऊंगा, कोई मेरे अंदर अपनी कुछ कमियां हैं जिसके कारण मेरे को अपने इंटरेस्ट है, कोई स्वार्थ के अधीन हूँ, कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे अंदर कमियां हैं, तो मेरी जो निर्णय शक्ति है विजडम वो फिर काम नहीं करेगी, प्रॉपर काम करेगी, उससे फिर धोखा खा लेते हैं
जी। तो हमें पहले आंतरिक विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है
जी, जी।
हमें अपने अंदर खुद के लिए विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, तो वो हम कैसे बढ़ाएंगे, इस पावर को हम अपने अंदर कैसे बढ़ाएंगे, पहले अपने लिए खुद के लिए।
विश्वास के साथ मैंने ये कहा कि विश्वास के साथ साथ अपनी इनर पर्सनैलिटी में
जी
अंदर की स्टेबिलिटी, उसके लिए जो हमारे यहाँ मूल अभ्यास है जिसको हम राज योगा मेडिटेशन भी कहते हैं, शांति में बैठने का
जी।
जैसे हम कोई भी चीज है जिसको हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो चीज फिर कम काम करने लग जाती है
जी।
उसकी जो एनर्जी है उसकी पावर कम हो जाती है। इस तरीके से अगर हमने सारा दिन सोचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बिजी, तो वी आर जस्ट चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, वो ये कंज्यूमिंग आवर एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है जितना आप यूज करेंगे और चार्ज नहीं करेंगे
जी,
तो वो फिर ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जब आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, प्रॉपर काम नहीं, वो एनर्जी प्रॉपर काम नहीं करेगी। और अगर आपके अंदर वो चीज रिजर्व है स्टॉक में, जैसे मनी है, बैंक बैलेंस है, आपके पास पैसा है, मगर आप जमा करते हैं और खर्च कम करते हैं, तो आपके पास मनी पावर कही जाएगी। ऐसे ही आपकी ये जो डिसीजन मेकिंग जो को लेने की ताकत है, एनर्जी है ये
जी।
अगर मैं ऐसा अभ्यास करता हूँ कि मैं अपनी कोई भी एनर्जी को ज्यादा यूज नहीं करता, ना बोलने में ना देखने में, आजकल लोग टीवी देखते रहेंगे, आजकल कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे सारा समय, जैसे दे आर कंज्यूमिंग देयर एनर्जी, जब फिर उस एनर्जी की जरूरत होती है डिसीजन के लेने के वक्त दे आर कन्फ्यूज्ड,
या फिर जहाँ यूज करना चाहिए
वहां नहीं कर पाते, प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। इसलिए उसका तरीका ये है कि वो अपनी एनर्जी को थॉट एनर्जी समझें इसको। जैसे हम कहीं देखते हैं कि बिजली जल रही है, हम बिजली को बंद कर देते हैं, पानी बह रहा है तो पानी की टूटी को बंद कर देते हैं, वी सेव। ऐसे ही अगर हम क्या सोच रहे हैं, जस्ट एक लिटिल चेकिंग शुरू कर दे, लिटिल चेकिंग कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, वो सोचना मेरा वर्थ वाइल है
जी।
तो अगर हम अपने इस सोच शक्ति को जमा करते जाएंगे तो देन हमारे अंदर वो स्टेज आ जाएगी जब हमें यूज करना होगा तो प्रॉपरली यूज करेंगे
जी,
उसको।
वो डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाएगी क्योंकि हम अवेयर होते जाएंगे अंदर से अपने लिए जी। तो एक फेथफुल विश्वसनीय पर्सनालिटी वाला जो व्यक्ति है उसकी विशेषताएं, जीवन की उसकी विशेषताएं क्या होंगी?
उसकी विशेषताएं ये होंगी कि एक तो उस किसी की चीज का उसको भय नहीं होगा
जी, बिल्कुल,
क्योंकि उसने कोई गलत डिसीजन लिया नहीं है, गलत काम किया ही नहीं है, और उसने कोई गिल्टी कॉन्शियस ही नहीं है। कहते ना गिल्टी कॉन्शियस, गिल्टी कॉन्शियस का मानना होता है कि बाहर से बेशक किसी को पता लगे या ना पता लगे, मगर आई नो कि मैंने ये गलत काम किया है। तो जब मैं गिल्टी कॉन्शियस ही नहीं हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी में वो चीज होगी कि मेरे फेस से भी और मेरे लोगों से जब मैं बात भी करूंगा किसी से तो उससे कॉन्फिडेंस, कहते फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो मेरे फेस पर भी वो चीज सामने आएगी, व्यवहार में भी सामने आएगी, और चीजें मुझे जैसे ना चिंता, भय, ये चीजें जो है वो लाइफ के अंदर नहीं होती
जी। जी बिल्कुल। तो जैसे आध्यात्मिकता कैसे सहायक सिद्ध हो सकती है इसको अपने अंदर बढ़ाने के लिए, इस पावर को?
बेसिक चीज है, देखिए कॉन्फिडेंस में भी विश्वास में भी बेसिक चीज ये है कि अगर मुझे ये पता है कि मैं हूँ कौन, अगर मैं अपने आप को ओनली बॉडी मान रहा हूँ, अब बॉडी तो जो है परिवर्तनशील है, चेंजिंग है, तो मैं उसके अंदर कष्ट में आ जाऊंगा, तकलीफ में आ जाऊंगा। अगर मुझे है कि जैसे मैं तो ये तो एक कपड़ा है यूज कर रहा हूँ, ये बचपन है, युवा है, वृद्ध है, ये तो चेंज है, ये फिर क्या मृत्यु भी क्या चीज है, इट इज अ चेंज। तो पहला अगर मेरा ये विश्वास है कि आई एम इमॉर्टल सोल, मैं आत्मा हूँ, और दूसरा ये कि आत्मा तो बहुत लोग समझते हैं, मैंने देखा है, मगर उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ी बात है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ,
जी बिल्कुल,
ये अगर विश्वास कि हम बोलते तो है तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु जो सगा तुम मात पिता हम बालक तेरे बोलते हैं, मगर विश्वास अगर मैं ईश्वर की संतान हूँ तो ईश्वर कौन ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो मैं भी तो उसका बच्चा हूँ ना
जी,
तो सारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है।
जी,
स्पिरिचुअलिटी का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है
जी, खुद के अंदर स्पेशली खुद के लिए आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए आध्यात्मिकता का बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट रोल है, तभी वो आत्मविश्वास वो डिटर्मिनेशन वो सारी
सारी
नैतिक
चीजें।
मूल्य हम जागरूक हो सकते हैं। हम कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस चाहेंगे कि आप दर्शकों से शेयर करें जो इस बात को इंडिकेट करता है।
मैंने देखा है कि विश्वास रखने से भी विश्वास बढ़ता है।
जी
मेरा ये अपना ये एक्सपीरियंस है कि कोई व्यक्ति में आपको ऐसे लगता भी है कि वो आपको धोखा दे देगा समझो, मगर आप विश्वास रखते जाइए।
हम पॉजिटिव सोचें, हम क्यों नेगेटिव सोचें?
मैं कहता हूँ अच्छा करने दीजिए
जी,
वो भी तो ह्यूमन बीइंग है
जी।
अगर मैं उसके लिए हमेशा ही अच्छा सोचता हूँ और विश्वास रखता हूँ ए डे विल कम कि वो रिटर्न करेगा। और सबसे बड़ा सुधार का भी किसी के जीवन में चेंज लाने का भी ये सिस्टम सबसे बढ़िया है
जी।
कि आप उसके ऊपर विश्वास रखो और उसको स्नेह दो प्यार दो
जी।
आप उसकी नेगेटिविटी से प्रभावित ना हो जाओ
जी, ये बहुत
अगर आप
जी।
उसकी नेगेटिविटी से प्रभावित हो गए तो आप भी फिर नेगेटिविटी बिहेव करेंगे
जी।
मैं अपनी ओरिजिनलिटी में रहूं तो उसको भी ओरिजिनलिटी में मैं ले आ सकता हूं।
जी बिल्कुल ठीक। मैं चाहूंगी कि इस विश्वास इस नैतिक मूल्य पर आप कोई ऐतिहासिक घटना या कोई ऐसा उदाहरण प्रेरणादायी उदाहरण हमारे दर्शकों को बताइए जिससे ये कॉन्फिडेंस और ये नैतिक मूल्य अपने अंदर जीवन में अपनाने की प्रेरणा उनमें जगे।
अब आप देख लीजिए कि हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का शुरू का इतिहास शुरू का यज्ञ का ब्रह्मा बाबा को ये नॉलेज मिली
जी।
श्री बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया अच्छा उनको अनुभव हुआ ही वॉज द ओनली वन पर्सन मगर उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि ये मैं नहीं कर रहा हूं ये कोई और कर रहा है। आज उसके इस एक विश्वास के आधार पर हजारों लाखों हमारे भाई बहने हैं जो हमारी टीचर्स हैं सेवा केंद्रों पर रहती हैं उनको ये विश्वास है कि ये कार्य उसका है वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट
जी। वो हम देख रहे हैं बहुत बड़ा।
अब मैं आपको अपना एक निजी अनुभव सुनाता हूँ। मुझे यज्ञ की तरफ से एक प्रोजेक्ट दिया है कि सोनीपत में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इट इज ए बिग प्रोजेक्ट
जी
काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कभी कभी ऐसे थॉट आता है और दादी जानकी कहती है कि इसको 25 जून तक आपने कुछ स्टार्ट करनी वहां सेवा मगर मैं कभी भी मुझे टेंशन या वो चीज नहीं होती क्योंकि मुझे पता है कि वो करवा रहा है ना आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट और इस विश्वास के आधार पर मुझे सहयोग भी मिल रहा है और कार्य आगे बढ़ रहा है।
जी जी आपकी बात से एक बात तो सीखने को जरूर मिलती है कि विश्वास हो तो पॉजिटिव हो
डेफिनेटली और उसके अंदर की आत्मा को जब हम देखते हैं हर एक शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर की संतान है उसके अंदर ओरिजिनलिटी में प्योरिटी है ही है पॉजिटिविटी है ही है जिसको हम आदि अनादि संस्कार कहते हैं हर एक के शुद्ध है ये विश्वास चाहिए मेरे में भी दूसरे में भी आदि अनादि संस्कार शुद्ध है
जैसे कि आप
ये परवर्टेड है जो आजकल थोड़ा बहुत है अगर हम उस रूप में देखते हैं और उस रूप से उसको बिहेव करते हैं उसके साथ व्यवहार में आते हैं तो डेफिनेटली ये चेंज आते हैं।
जैसा कि आपकी बातों से थोड़ा हम समझ पा रहे हैं कि सकारात्मकता विश्वास की शक्ति को जगाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। सकारात्मक विचार सकारात्मक एटमॉस्फियर संग भी वैसा हो सकारात्मक तो डेफिनेटली हम अपने अंदर के विश्वास को और इस गुण को बढ़ा सकते हैं जैसा कि अभी आपने अपने अनुभव से भी बताया
और साथ साथ में अगर हम रेगुलरली जैसे डाइट होता है अब शरीर को चलाने के लिए खाना तो लेना पड़ता है ना अगर मैं खुद भी इस पावर को डेवलप करने के लिए अपना निजी कुछ अभ्यास करता हूँ तो वो भी बहुत मदद मिल सकती है।
जी जी मैं यहाँ पूछना चाहूंगी अगर ये क्वालिटी ना हो जीवन में फेथफुलनेस इसके क्या नुकसानदायक परिणाम हो सकते हैं क्या नुकसान हो सकता है वो भी हमारे देश में बताइए।
आप देखिए अगर किसी व्यक्ति को जीवन में ये हो कि लोग मेरे पर विश्वास नहीं रखते
जी
या मेरा किसी में विश्वास नहीं है, तो आई टेल यू कि वो मेरी मेरी लाइफ क्या होगी। मैं संबंध में भी आ रहा हूँ, वो हर वक्त मेरा मन बुद्धि में डाउट डाउट, जिसे मिस्टर डाउट कहते हैं, तो मैं तो मिस्टर डाउट हो जाऊंगा ना। और हर एक ऊपर मैं किसी को अंडरस्टैंडिंग को विश्वास ही नहीं रख रहा, तो मैं गलती समझता रहूंगा। मेरे से कोई लोग अच्छाई से चल रहा है, मैं फिर भी कहूंगा ये तो ठीक नहीं चल रहा है। तो इसका मैं ना हर एक को ऊपर विश्वास नहीं रखूंगा, और हर एक के ऊपर किसी तरीके से मुझे सहयोग क्या मिलेगा। अगर मेरा किसी में विश्वास नहीं होगा तो मुझे सहयोग नहीं मिलेगा। अगर मुझे सहयोग नहीं मिलेगा तो सम टाइम आई फील अलोन, कोई काम मैं किसी सहयोग लेकर के कर नहीं सकूंगा। संगठन मैं किसी संगठन को चला नहीं सकूंगा, संगठन बना नहीं सकूंगा, मैं एक व्यक्तिगत जीवन में रह जाऊंगा और अलग प्रकार का जैसे कट जाऊंगा,
सबसे कट जाऊंगा। जी बिल्कुल, ये तो बहुत आगे बढ़ने के सारे रास्ते ही
बंद हो जाएंगे।
जी, तो विश्वास रखना पहले अपने अंदर और दूसरों के ऊपर। तो हम पहले आंतरिक विश्वास को जगाना इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा, वो हम कैसे बढ़ाएं अपने अंदर
आंतरिक विश्वास को। वो ये है कि जब हम बहुत एकांत और शांत में बैठते हैं ना, वी टॉक टू आवर सेल्फ्स,
खुद से
हम लोगों से बात करना तो जानते हैं, बिजी रखते हैं,
खुद के लिए टाइम नहीं।
जब हम अपने आप से बात करते हैं ना
जी,
कि मैं व्हाट इज रियलिटी, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, व्हाट फॉर, भागा दौड़ी किस लिए, क्या चीज है ये, मेरा आदि क्या और अंत क्या होगा, अंत में क्या साथ जाएगा, क्या चीजें हैं ये। लाइफ को जब हम समझ लेते हैं, पुनर्जन्म को समझ लेते हैं, तो उससे बहुत सी चीजें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। इट इज नॉट ओनली वन लाइफ, आगे भी है और पीछे भी है, दीज आर ऑल लिंक्ड, इट इज ए जर्नी है ना। हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे।
जी, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि समाज में संबंधों में विश्वास की बात तो आपने बताई कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके ऊपर थोड़ा अगर हम और उठे, समाज ले एक विश्व में इस नैतिक मूल्य की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है,
उसमें आप देख लीजिए कि हमारे हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी ऐसी पर्सनैलिटीज हुई हैं कि जिनका लोगों में विश्वास था, उन्होंने क्या क्या काम करके दिखा दी। उनके पास कुछ भी नहीं था, मगर अपने सिद्धांतों में पक्के रहे, उनकी अपने सिद्धांतों में विश्वास था और लोगों ने उसमें विश्वास किया। अगर मेरा कोई सिद्धांत ही लाइफ का नहीं है, मेरा कोई अपना कोई सिस्टम ही नहीं है, और तो लोग मेरे में कैसे विश्वास करेंगे। तो इसलिए आज दुनिया को, आई टेल यू, लोग कहते हैं कि हमें एक अच्छी पर्सनैलिटी के समाज को जरूरत है। और ये क्राइसिस है, हर 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 राजनीतिक में, किसी फील्ड में आप चले जाओ, आज सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि पर्सनैलिटी नहीं है
जी।
लोगों को पर्सनैलिटी चाहिए जिसमें वो लोग विश्वास कर सके। हम ये कहेंगे कि हमारे भविष्य में नेता हो गए, हमारे संत हो गए, हमारे ग्रंथ महान है, हमारे ऋषि महान है, लोग कहेंगे व्हाट अबाउट प्रेजेंट। अगर आज समाज को चाहिए ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे विश्वास जिस पर लोग करें
जी।
और इसलिए आप लोग देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग 5 साल के बाद एक पार्टी को देते हैं, विश्वास रखते हैं, अगले साल फिर उसको बदल देते हैं। तो ये
बदलते जाते हैं,
तो उनको विश्वास नहीं है। रखते हैं लोग विश्वास रखते हैं, मगर जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो फिर उनको कष्ट होता है, तकलीफ होती है। मैं किसी में विश्वास रखूं, वो विश्वासघात करे, तो है तो तकलीफ की बात है।
बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। बहुत सुंदर भाई जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस विश्वसनीयता, इस नैतिक मूल्य पर, इसके महत्व पर प्रकाश डाला। इसे कैसे जीवन में अपनाएं और इसके क्या फायदे हैं जीवन में अपनाने से, और एक बड़े तौर पर सामाजिक रूप में भी हम इसे कैसे अपना सकते हैं अपनी लाइफ में, इसका आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप से और अच्छे ढंग से, स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
ओम शांति।
ओम शांति। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, विश्वास जैसा इस शब्द में इतना दम है, इस विश्वास पर हम विश्वास करें। और जैसा कि अभी हमने सुना, भाई जी ने हमें बताया कि पहले हम अपने ऊपर विश्वास करें, अपने को अवेयर करने के लिए खुद के लिए हम टाइम दें, हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें, तब हम खुद में वो आत्मविश्वास जागृत कर सकते हैं। और जब आत्मविश्वास जागृत होगा तो हम दुनिया में किसी के भी साथ, हमारे अंदर एक जजमेंट पावर आ जाएगी कि हम सामने वाला विश्वास करे या ना करे, वो विश्वसनीय है या ना नहीं है। तो चलिए, मैं समझती हूँ, आशा करती हूँ इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस नैतिक मूल्य के लिए आप अपना जरूर समय देंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले अंक में एक नए नैतिक मूल्य और नई शख्सियत के साथ फिर से इन नैतिक मूल्य की यात्रा को हम आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम